नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लाहौल स्पीति जिला के काजा को दी करोड़ों की सौगात। जनजातीय व सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को बताया केंद्र सरकार की प्राथमिकता। प्रदेश मंत्रिमंडल ने 500 पशु मित्रों की भर्ती को दी मंजूरी। लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। और राजधानी शिमला सहित अनेक भागों में मॉनसून की भारी वर्षा, अगले दो दिन कई क्षेत्रों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले व संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लाहौल स्पीति जिला के काजा में करोड़ों रूपये की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने काजा में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत लगभग 74 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले उच्च ऊंचाई खेल प्रशिक्षण केंद्र, आइस हॉकी रिंक, अत्याधुनिक खेल प्रशिक्षण केंद्र और पेविलियन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सांसद कंगना रनौत और विधायक अनुराधा राणा भी मौजूद रहीं। किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप देश भर में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि युवाओं को खेलों के बेहतर अवसर मिल सकें।
कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर एट काजा, ये इसमें आइस हॉकी वगैरह जो फैसिलिटी होते हैं, काजा को आप लोग मालूम है वहाँ एक विशेष परिस्थिति है मौसम की वजह से, तो आइस हॉकी के साथ साथ विंटर स्पोर्ट्स का और बाकी स्किलिंग के लिए और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग देने का भी व्यवस्था किया जाएगा।
ये इसका टोटल लागत है 73 करोड़ 77 लाख। एक स्कीम है कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर एट क्रिकेट ग्राउंड काजा, और इसका टोटल लागत है 1 करोड़ 46 लाख।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों की भर्ती करने को मंजूरी प्रदान की है, जिन्हें 5,000 रूपये का मासिक मानदेय दिया जाएगा। शिमला में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 5,000 रूपये से बढ़ाकर 5,500 रूपये करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने पे मैट्रिक्स लेवल 11 के पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनर्वर्गीकृत करने को भी मंजूरी दी। ग्रुप सी पदों के लिए केवल हिमाचली उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र होंगे। बैठक के बाद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि पुनर्वर्गीकरण के बाद भर्ती प्रक्रिया राज्य चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी पदों के लिए लागू प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित की जाएगी।
जो हमारा पे मैट्रिक्स है, जो लेवल 11 था, उसको जो है अब ग्रुप बी से हटाकर ग्रुप सी में लाया गया है। तो ऑल इंडिया लेवल पर जो है इसमें कैंडिडेट्स आते थे, जिस कारण हमारे प्रदेश के हमारे अपने कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है चांसेस कम हो जाता था। तो अब इस फैसले के कारण अब जो है ग्रुप सी में इनको लाने से अब केवल जो है सारे हिमाचल के ही कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, इसका फायदा होगा। मल्टी टास्क वर्कर है पीडब्ल्यूडी में, इनको 500 रुपए इनके ऑनरेरियम में बढ़ाने का फैसला भी लिया गया। मिल्क इंसेंटिव जो स्कीम है, इसमें अब जो हमारे कोऑपरेटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में है, उनको भी पर लीटर जो है 3 रुपए का मिल्क सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। इससे जितने भी हमारे जो कोऑपरेटिव्स है, प्राइवेट जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कामधेनु है या दूसरे हैं, इन सबको जो है इसका लाभ मिलेगा।
मंत्रिमंडल की बैठक में सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ब्याज सब्सिडी के प्रावधान को मंजूरी दी गई। जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजनाओं के लिए 5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं पर 4% अनुदान का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने ग्रीन पंचायत योजना के तहत 100 पंचायतों में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए हिम ऊर्जा और चयनित ग्राम पंचायतों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की 3,645 पंचायतों में पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करने को भी मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दी। भारतीय सेना द्वारा शिमला में आज भारत तिब्बत संबंधों पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के पहले सत्र में भारत तिब्बत संबंधों की पड़ताल विषय पर क्लॉड आरपी, डॉक्टर शशिबाला और डॉक्टर अपर्णा नेगी ने अपने विचार रखे। दूसरे सत्र में सीमा प्रबंधन और सामरिक चिंताएं विषय पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, राजदूत अशोक के कंठा, डॉक्टर दत्तेश डी परुलेकर, अंतरा घोषाल सिंह और डॉक्टर अमृता जश सहित अन्य वक्ताओं ने प्रकाश डाला। इस मौके पर सेंट्रल कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्र सेन गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय व सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि यदि पार्टी हाईकमान उन्हें फिर से पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपती है तो वे इसके लिए तैयार हैं। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभाया है और संगठन को मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाएगा।
अब जो भी जिम्मेवारी हाईकमांड देगी उसको मैंने पहले भी तन मन धन से काम करने की कोशिश की है, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया है और अब भी अगर ये जिम्मेवारी हाईकमांड मेरे कंधों पर डालती है तो उससे जो भी संभव हो सकेगा मैं उसको अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करूंगी। हमने तो हमारा काम नहीं है कि डिसाइड करना, इवेंचुअली इसको हाईकमांड ही डिसाइड करता है। हमने बार बार कितनी बार रजनी पाटिल जी यहाँ आई है, उनसे भी आग्रह किया है, सभी का व्यू प्वाइंट उन्होंने लिया है, सबसे बातचीत की है, सबकी नाराजगी भी उन्होंने सुनी है। अब ये काम उनका है कि किस तरीके से वो हमारी बात हाईकमांड के समक्ष रखती है।
प्रतिभा सिंह ने कहा कि 15 जुलाई को शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी इस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। हिमाचल प्रशासनिक सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में अनेक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक और दोपहर बाद 2:30 बजे से 4:30 बजे तक दो सत्रों में होगी। राज्य लोक सेवा आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने सभी अभ्यर्थियों से परीक्षा से करीब एक घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचने को कहा है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक भागों में आज मॉनसून की भारी वर्षा हो रही है। इस वर्षा से राज्य के सभी प्रमुख नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने और बाढ़ आने की घटनाओं में अब तक 17 लोगों की मृत्यु हुई है और 300 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा भूस्खलन के कारण अभी भी 37 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2-3 दिन तक भारी बारिश से अधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर लारजी जल विद्युत परियोजना में कल 29 जून को सुबह 6 बजे से 30 जून सुबह 6 बजे तक लारजी जलाशय की प्री मॉनसून फ्लशिंग की जाएगी। राज्य बिजली बोर्ड के प्रवक्ता अनुराग पराशर ने बताया है कि इस दौरान लारजी बांध के सभी गेट संचालित किए जाएंगे और ब्यास नदी से पानी छोड़ा जाएगा। इस दौरान लोगों से ब्यास नदी के नजदीक न जाने और एहतियात बरतने की अपील की गई है। कुल्लू जिला में ऑट सैंज मार्ग पर पागल नाला के पास एक वाहन के सैंज नदी में गिरने से दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच 25 जून को जीवा नाला में बादल फटने से आई बाढ़ में बही 13 वर्षीय मूर्ति देवी का शव आज बक्शाहल के समीप नदी के किनारे पर बरामद हुआ है। इसके अलावा बाकी दो शवों की तलाश जारी है। भारत ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में वैश्विक स्तर पर 61% की तुलना में 78% की कमी हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट के अनुसार नवजात मृत्यु दर में भी वैश्विक स्तर पर 54% की तुलना में 70% की कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण में सुधार पर निरंतर ध्यान देने के साथ भारत ने वंचित आबादी तक पहुंचने के लिए एक सक्रिय और समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है। मंत्रालय ने कहा कि टीकाकरण सबसे शक्तिशाली और प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में से एक है। टीकाकरण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसके सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट होती है, जो 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ शिशुओं को सालाना मुफ्त टीकाकरण सेवाएं प्रदान करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज लाहौल स्पीति जिला के काजा को दी करोड़ों की सौगात। जनजातीय व सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को बताया केंद्र सरकार की प्राथमिकता। प्रदेश मंत्रिमंडल ने 500 पशु मित्रों की भर्ती को दी मंजूरी। लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्करों का मानदेय बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। और राजधानी शिमला सहित अनेक भागों में मॉनसून की भारी वर्षा। अगले 2 दिन तक कई क्षेत्रों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।